तमहसदेवं त्रैकालिकं स्थिरचरे स्वनुवर्दितांसं तं जीव कर्म पदवीं अनुवर्तमानं तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूटने के लिए उत्सुक रहता है तो उसके अंतःकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे ये ज्ञान देते हैं, मेरी शरण में आओ। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अन्य सारे कार्यों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। ये मानना होगा कि ज्ञान का स्रोत परम पुरुष है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है, कैसे? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान कहते हैं मेरे ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति प्राप्त करता है और मुझसे विस्मृति भी मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है, ये जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, भगवान उसे क्या करते हैं? अपनी सेवा की विस्मृति का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान उसको भुला देते हैं। इसी प्रकार जब कोई इस प्रकृति पर अधिकार करने में हताश हो जाता है और भव बंधन से छूटना चाहता है तो भगवान उसे भीतर से ही ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि भाई उनके शरण में जाए तभी उसकी मुक्ति होगी। तो हृदय के अंदर भगवान जो है क्या करते हैं? ज्ञान भी प्रदान करते हैं और अज्ञान भी प्रदान करते हैं, दोनों बातें। तात्पर्य में लिखते हैं, अतः जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई अपने वास्तविक पद पर स्थित नहीं हो पाता। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं हो लेता तब तक उसे इस जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। आगे वो जीवात्मा प्रार्थना करता है, क्या कहता है कि अपनी माता के उदर में रक्त मल और मूत्र के कूप में गिरकर मैं महीनों की गिनती कर रहा हूं कि कब बाहर निकलूंगा। अपनी माता की जठराग्नि से जलता हुआ देहधारी जीव मैं बाहर निकलने की उत्सुकता में महीनों की गिनती कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। आप लोगों को याद है कि कितना कष्ट भोग रहे थे माता के गर्भ में। देहन्य देह विवरे जठराग्निना श्रृंग विन मूत्र कोप पतितो वृत तप्त देहां इच्छन्यतो विवशितुं गणयन् स्वमातां निर्वासते कृपणधीर भगवन् कदानु। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, 7 महीने के बाद शिशु में चेतना आती है, अतः उसे अपनी दुस्तर स्थिति का बोध होने लगता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है। बाहर आने तक वह महीनों की गिनती करता रहता है और उस कारागार से निकलने के लिए उत्सुक रहता है। आजकल के सभ्य तथाकथित सभ्यता जो है इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देती। तथाकथित सभ्य मनुष्य जीवन की इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देता और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह गर्भ निरोधक विधियों या गर्भपात के द्वारा उसे मारने का प्रयत्न करता है। ऐसे लोग गर्भ की भयावह स्थिति के प्रति चिंतित न रहकर भौतिकता में पड़े रहते हैं और मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। गर्भपात करते हैं उसका क्या परिणाम होता है जानते हो? जो व्यक्ति गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसको मारते हैं जानते हैं उसका क्या परिणाम होता है? उसका परिणाम होता है कि कई बार उसको गर्भ में आना पड़ेगा, उसको भी इसी प्रकार मारा जाएगा गर्भ में, और इस प्रकार से कई जन्मों तक उसको सूर्य की रोशनी नहीं देखने को मिलेगी, है ना? तो जानते नहीं कि कितना कष्ट है। और वो जीवात्मा गर्भ के अंदर अभी प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई, यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूं, अभी 10 महीने का है। पतितात्माओं के मित्र भगवान की इस हेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के कारण मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या। उस समय वो हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता जीव, उसके दोनों हाथ जुड़े रहते हैं और जो सिर है वो पेट में लगा रहता है, तो झुक करके और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है और मेरे पास क्या है इसके अलावा। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के अतिरिक्त और मेरे पास क्या है। ये ने दृशिम गति मसो दशमाशम संग्राहिता पुरुदयेन भवा दृशेन शतुकृते न सदीन नाथा को नाम तत्प्रतिबिनांजलि मत्स्य कुरियाम। तात्पर्य में लिखा है जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि शरीर के भीतर आत्मा में स्थित परमात्मा ही बुद्धि और विस्मृति देने वाले हैं। जब भगवान देखते हैं कि बद्ध जीव माया के बंधन से छूटने के लिए उत्सुक है तो वे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु के रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं अथवा साक्षात भगवान का अवतार लेकर उपदेश देते हैं। जैसे भगवत गीता का उपदेश साक्षात भगवान अर्जुन को दे रहे हैं और कपिल भगवान साक्षात अपनी माता देवभूति को उपदेश दे रहे हैं। तो प्रभा देखते हैं तात्पर्य में भगवान सदैव इस ताक में रहते हैं कि पतित आत्माओं को अपने धाम में ले जाएं। हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि वे हमें सदैव सुखी बनाना चाहते हैं, है ना। ये हमारे पास भगवान को उनकी भलाई का बदला चुकाने के लिए कोई साधन नहीं है, अतः हम केवल कृतज्ञता का अनुभव कर सकते हैं और हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। इतने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपके ऊपर भगवान ने जितनी कृपा करी है आप उसका कुछ भी नहीं बदला चुका सकते हैं, लेकिन अगर आप कृतज्ञता प्रकट करो कितना हाथ जोड़ करके, इतने से भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इतना करने के लिए भी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, है ना, ये दुर्भाग्य है। आगे वो जीव जो है शरीरधारी जीव अपनी अंतः प्रेरणा से देखता है, वो शरीर के अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु उसे ऐसा शरीर प्राप्त है जिससे वो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और अपने गंतव्य को समझता है, अतः वो भगवान को सादर नमस्कार करता है। वो कहता है कि मैं भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं भीतर और बाहर देख सकता हूँ। पश्यत्ययम् धिषणया ननु सप्तभद्री शारीरकेदम् शरीरयपरः स्वदेहे यत्रिष्टया संतमहम् पुरुषं पुराणम् अस्य बहिर्हृदि च चैतन्यमे प्रतीतम्। तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, विभिन्न प्रकार के शरीरों की विकास क्रिया फूल के फूलने के समान है। जिस प्रकार फूल के विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, कली, विकासमान फूल, पूर्ण विकसित फूल और फिर सुगंध और सुंदरता से पूरित फूल, इस प्रकार क्रमिक विकास में 84 लाख योनियां होती हैं और निम्न योनि से उच्चतर योनि में क्रमबद्ध उन्नति होती है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च समझा जाता है क्योंकि इसमें जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहती है। माता के गर्भ में स्थित भाग्यवान शिशु अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है और इस तरह वह अन्य प्राणियों से पृथक होता है। मनुष्य से नीचे के पशुओं में सुख दुख की चेतना रहती है, किंतु वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, खाना, सोना, संभोग और सुरक्षा से अधिक और कुछ नहीं सोच पाते, किंतु ईश्वर की कृपा से मनुष्य में चेतना इतनी विकसित रहती है कि वह अपनी अद्वितीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है और आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार कर सकता है। तो इस प्रकार से शिशु को जो है गर्भ के अंदर ज्ञान होता है कि मुझे मनुष्य का शरीर जो भगवान ने दिया है भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। आगे वो क्या प्रार्थना करता है भगवान से, अतः हे प्रभु यद्यपि मैं अत्यंत भयानक परिस्थिति में रह रहा हूं किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। इतने कष्ट में भी वो क्या कहता है कि मैं बाहर नहीं आना चाहता, क्यों क्यों है? हाँ, भौतिकता में बंध जाऊंगा मैं। माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है, उसके बाद तुरंत ही झूठा ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है, है ना। झूठा ज्ञान शुरू हो जाता तुरंत जीव को। सोहम वसन्न विभो बहु दुख वासम गर्भान निर्जगमिसे बहिरंध कूपे यत्रोपयातम सर्पति देव माया मिथ्या मदर्यदनु संस्रति चक्र मेतन। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक शिशु अपनी माता के गर्भ में रहता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण और भयानक रहता है, किंतु इसका लाभ यह होता है कि वह भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। लाभ तो है, किंतु उधर से बाहर आते ही जब शिशु का जन्म हो जाता है तो माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेर कर इस शरीर को स्व मनवाया जाता है। माया का अर्थ है भ्रम। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने को अपना शरीर करके पहचानता है, ये अहंकार की चेतना कि मैं ये शरीर हूं शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उत्पन्न हो जाती है। माया के प्रभाव से मनुष्य जन्म लेते ही सब कुछ भूल जाता है, अतः शिशु प्रार्थना करता है कि बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में ही रहना क्या श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि यही सोचकर सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, क्योंकि वे मिथ्या देह बोध के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। अपनी माता के गर्भ में ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करके 12 वर्ष के बाद वे गर्भ से बाहर आए और तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ दिया, जिससे वे माया के वशीभूत ना हो। फिर जीव प्रार्थना करता है, अतः और अधिक क्षुब्ध ना होकर मैं अपने मित्र की सहायता से, अपने मित्र कौन, भगवान परमात्मा की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म और मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट होने से बच सकूंगा। तस्मात् अहम् विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानमासु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसन में तदनेक रंध्रम मामे भविष्य दुपसादते विष्णु पादहां। तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, संसार के कष्ट उसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं जब आत्मा माता और पिता के रज और शुक्र में शरण प्राप्त करता है, और ये कष्ट माता के गर्भ से निकलने के बाद तथा उसके भी आगे चलते रहते हैं। हम नहीं जानते किन दुखों का अंत कहां है, किंतु इनका अंत शरीर बदलने से नहीं होता। ये शरीर परिवर्तन प्रतिक्षण चल रहा है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गर्भावस्था की तुलना में उन्नति करके सुखी हो रहे हैं, नहीं। अतः सबसे सही यह है कि कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जाए। यहां पर उपसादित विष्णु पादः कहा गया है कि जिसका अर्थ है कृष्ण भक्ति की अनुभूति। जो बुद्धिमान है और कृष्ण भक्ति उत्पन्न कर सकता है वह इस जीवन में सफल होता है, क्योंकि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही वह जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। इस तरह से हमने 10 श्लोकों में पढ़ के सुनाया। कपिल भगवान जो है 10 श्लोकों में वर्णन करते हैं कि जीवात्मा कैसे गर्भ के अंदर प्रार्थना करता है, परमात्मा की प्रार्थना करता है। तो आज का जो श्लोक था, भगवान ने कहा अर्जुन से कि ये गोपनीय से भी अधिक गोपनीय बात मैंने तुम्हें बता दी है। तो हमने चर्चा की कि गोपनीय से भी अधिक गोपनीय बात क्या है, परमात्मा की शरण लेना। तो जो जीवात्मा है तो वो अपने हृदय के अंदर परमात्मा की शरण लेता है कष्ट से छूटने के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति और ज्यादा ज्ञान में आगे बढ़ता है तो फिर वो भगवान को समझता है, है ना, तो फिर वो जो है भगवान की शरण लेता है कि नहीं। तो जिसके अंदर भगवान का जो है अनुभव नहीं है, जिसको भगवान का अनुभव नहीं हुआ, तो वो जो है हृदय के अंदर परमात्मा की शरण लेता है। जैसे जीवात्मा गर्भ के अंदर है कि नहीं, लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो भगवान की शरण लेते हैं। जैसे कुंती महारानी है ना, उन्होंने भगवान की शरण ली है कि नहीं। जब धृतराष्ट्र के महल में वे संकट का अनुभव करती हैं धृतराष्ट्र के कारण और धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण, उनका जीवन और उनके पांच पुत्रों का जीवन संकट में है, क्योंकि वो मार डालना चाहते हैं कुंती के साथ साथ पांचों पांडवों को, क्योंकि ये उनके लिए कांटे हैं, क्योंकि वे जो है निष्कंटक राज्य भोगना चाहते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार राज्य का अधिकार तो किसको है, कुंती महारानी और उनके पुत्रों को है कि नहीं। तो इस कारण से जो है कुंती महारानी संकट में है तो कृष्ण को याद करती हैं, है ना। तो उसमें बड़ी सुंदर प्रार्थना है, कुंती महारानी कृष्ण को याद करती हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, है ना। तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति हृदय के अंदर परमात्मा को याद करता है तो हृदय के अंदर जो परमात्मा है वो सहायता करते हैं, है? जीव को संकट से बचाते हैं। और कोई व्यक्ति जो है ना भगवान को याद करता है तो भगवान के जिस रूप की वो शरण लेता है, और जिस स्थान में भगवान की शरण लेता है तो भगवान उसी रूप से उसी स्थान से उसकी सहायता करते हैं। द्रौपदी ने जब भगवान को याद किया था तो क्या मान करके याद किया था, कि भगवान द्वारका में है, भगवान द्वारका में है, तो फिर भगवान द्वारका से आए है कि नहीं। तो भगवान द्वारका से आए और द्रौपदी के वस्त्र बने। ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम। हम जो परमात्मा की शरण लेते हैं तो भगवान जो है हृदय से परमात्मा के रूप में उसकी सहायता करते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान जो है उनकी सहायता करते हैं, है ना। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? उनका प्रश्न है कि ब्रह्म ज्ञान में कोई व्यक्ति सोचता है कि हम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, है ना, और जब भगवान की शरण लेता है तो कृष्ण की शरण लेता है, तो परमात्मा की अगर कोई शरण लेता है तो किस रूप में शरण लेता है? जैसे जीवात्मा, तो जीवात्मा जो है जो गर्भ के अंदर है वो परमात्मा की शरण ले रहा है, है ना। तो परमात्मा की शरण किस प्रकार से ले रहा है, कि वे ही हैं जो कि प्रत्येक जीव के साथ हृदय में बैठे हुए हैं और वो ज्ञान भी दे रहे हैं और अज्ञान भी दे रहे हैं। जैसे कि भगवान ने गीता में बताया है कि सर्वस्य चाहम मृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चाह, कि मेरे द्वारा ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति प्राप्त होती है, है ना। तो जो है कोई व्यक्ति परमात्मा की शरण लेता है इस प्रकार से, लेकिन जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आता है तब तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता, ठीक है ना। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आता है तब तक वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि भगवान ही जो है परमात्मा के भी कारण है, है ना। जैसे कि सूर्य का जो संपूर्ण ज्ञान है, वो क्या है, सूर्य का संपूर्ण ज्ञान क्या है, सूर्य देवता और उनका रथ, उनके रथ के साथ घोड़े हैं, है ना, उनका सारथी अरुण नाम का सारथी है, है ना। और भी विस्तृत वर्णन है सूर्य देवता और उनके जो है ना रथ का, तो ये तो मतलब पूरा ज्ञान है। लेकिन कोई व्यक्ति जो है ना अगर दूर से देखता है सूर्य को, जैसे हम लोग सूर्य को दूर से देखते हैं तो एक मंडल दिखाई पड़ता है सूर्य का, कि ये आकाश में सूर्य मंडल है ना। तो ये जो ना मतलब इसी प्रकार से कि भाई परमात्मा का जैसे ज्ञान है तो वो थोड़ा अधूरा ज्ञान है, ये हृदय में स्थित है सबके, है ना, तो अधूरा ज्ञान है परम सत्य का। भगवान के रूप में जो है जब परम सत्य का ज्ञान होता है तो पूर्ण ज्ञान होता है। भगवान के साथ कोई व्यक्ति अपना कोई संबंध बनाता है, शांत रस में, दास रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में संबंध बनाता है, तो ये जो है पूर्ण ज्ञान है परम सत्य का। लेकिन परमात्मा के रूप में कोई व्यक्ति जो है इतनी समझ पाता है कि वो हृदय में स्थित हैं और वो जो है बंधन को छुड़ा सकते हैं, मुझको जन्म मरण के बंधन से मुझको छुड़ा सकते हैं। लेकिन वो जब तक उन परमात्मा को भगवान के रूप में समझ करके उनसे कोई सेवा का संबंध स्थापित नहीं करता है तब तक उसको रस नहीं प्राप्त हो सकता है, तब तक उसको भक्ति का रस आस्वादन नहीं हो सकता है, है ना। तो इस तरह से जो है भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण है, क्योंकि इसमें भक्ति के विभिन्न प्रकार के रसों का आस्वादन होता है कि नहीं, और सेवा होती है। परमात्मा के साथ में जुड़ते हैं तो केवल प्रार्थना कर सकता है जीव, शरण ले सकता है, लेकिन सेवा तो नहीं होती कुछ, है कि नहीं। तो जब तक सेवा ना हो तब तक जो है वो रस कहाँ प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? उनका प्रश्न है कि अभिमन्यु को क्यों मरना पड़ा था? खैर आज के श्लोक से तो अलग ही विषय है, अभिमन्यु को क्यों मरना पड़ा था, इसके कई उत्तर हैं। अभिमन्यु को क्यों मरना पड़ा था, मैं आपसे पूछता हूँ कि किसको नहीं मरना पड़ता है? हर व्यक्ति को मरना पड़ता है। अभिमन्यु के पहले भी बहुत से योद्धा मरे, अभिमन्यु के साथ भी बहुत से योद्धा मरे, अभिमन्यु के बाद भी बहुत से योद्धा मरे। तो ये जो है प्रश्न जो है ना बड़ा व्यापक है। अभिमन्यु का भाग्य था, हाँ ये भी उत्तर है। अभिमन्यु की मृत्यु जो है ना निश्चित थी, क्योंकि चंद्रमा ने अपना पुत्र बुध को भेजा था, क्योंकि जब भगवान का अवतार होता है तो सब देवता जो है मतलब भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आते हैं और अपने जो है जो साथ में उनके सेवक हैं उनको भी भेजते हैं। तो चंद्रमा ने अपने पुत्र बुध को भेजा था अभिमन्यु के रूप में। तो चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने पुत्र को ज्यादा देर तक अपने से दूर नहीं रख सकता हूँ, इसलिए जल्दी ही मैं उसको अपने पास वापस बुला लूंगा, बहुत से असुरों का वध करके वो मेरे पास जल्दी वापस आ जाएगा। तो एक ये भी उत्तर है कि चंद्रमा जो है ना अपने पुत्र को ज्यादा देर तक अपने से दूर नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो जल्दी उन्होंने बुला लिया। तो 16 साल की अवस्था में उन्होंने बुला लिया, और 16 साल जो है जो अभिमन्यु के थे वो स्वर्ग लोक में वो 16 दिन के बराबर है, आप समझे। यहाँ का जो एक साल है वो स्वर्ग में देवताओं का जो है एक दिन के बराबर होता है। तो उन्होंने कहा कि बस 16 दिन के लिए ही मैं जो है अपने पुत्र को दे सकता हूँ, बाद में अपने पुत्र को वापस बुला लूंगा। तो चंद्रमा का जो है ना बुध बहुत प्यारा है, प्यारा पुत्र है, इसलिए बुला लिया। एक ये भी उत्तर है, और भी कई उत्तर है कि अभिमन्यु की मृत्यु क्यों हुई। उनका प्रश्न है कि क्या प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है? ये बहुत ही अज्ञान है और बहुत बड़ा अपराध है। आपसे जैसे मैं कहूं कि क्या प्रत्येक जुगनू सूर्य बन सकती है? जुगनू की जो है ना सूर्य से कोई तुलना ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। जुगनू कहां सूर्य है कि नहीं, कोई भी जुगनू जो है ना सूर्य नहीं बन सकती। तो जीवात्मा जो है ना अगर सबसे अधिक अगर सफलता प्राप्त करता है तो क्या है, भगवान का सेवक बन सकता है, आप समझे ना। तो भगवान एक हैं और जो है ना जीवात्माएं अनेक हैं, और मुक्ति के बाद भी वो भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान जो है वही उत्तम पुरुष हैं, क्योंकि वही सबके हृदय में विराजमान है और वही सर्वज्ञ हैं और सबका पालन करने वाले। कोई जीव मुक्त अवस्था में भी भगवान के समान सर्वज्ञ नहीं हो सकता, आप समझे। कोई भी जीव जो है अपना भगवान के साथ संबंध जान सकता है और उस संबंध में सेवा कर सकता है, लेकिन वो और कुछ नहीं जान सकता है। कि बाकी जो ना मतलब हर जीव की बातों को इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है वो पूरा ज्ञान वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जीव बहुत क्षुद्र अंश है भगवान का, आप समझे ना, यह समुद्र है और समुद्र की बूंद तो कोई तुलना ही नहीं है, आप समझे ना। लेकिन हाँ, समुद्र की बूंद समुद्र में मिल जाती है, लेकिन ऐसा जो है ना, ऐसी घटना जीव के साथ भगवान में नहीं होती है कि जीव भगवान से मिल जाए। जो मायावादी हैं वे इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जैसे बूंद समुद्र में मिल गई, समुद्र मिल गई तो वो समुद्र बन गई, तो उसी प्रकार से जीव जो है ना परमात्मा में मिल जाए और परमात्मा बन जाए। लेकिन ये सिद्धांत ये सही नहीं है, गलत है ना। हम भगवान के भिन्न अंश हैं, सनातन अंश हैं। तो सनातन अंश का मतलब ये है कि हम हमेशा अंश रहे हैं और हमेशा अंश रहेंगे। जब भगवान ने कहा ममे मांसो जीव लोग जीव भूता सनातन है, जब भगवान कह रहे हैं कि सनातन अंश है जीवात्मा, तो फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि कभी जीव भगवान था कि आगे चल करके भगवान बन जाएगा। भगवान कहते सनातन अंश है, तो सनातन अंश का मतलब क्या है कि अंश ही हमेशा था और अंश ही हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज नहीं होती है कि भाई कुछ तोड़े जाए या जुड़े जाए, कि भगवान टूट गए तो जीव बन गए और फिर सब जीव जुड़ गए तो भगवान बन गए, ऐसी चीज नहीं है इसमें। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु शिला प्रभुपाद के श्री राधा पार्थ आरती ललिता विशाखा के श्री श्री गौड़ताय भगवान के श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
गौर हरे गौर हरे
हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 राम